नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज। और अब मुख्य समाचार। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। सरकार ने घरेलू विमान कंपनियों के लिए राहत उपाय की घोषणा की। हवाई अड्डों पर शुल्क में 25% तक कटौती। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.6% किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में भारत की परमाणु उपलब्धि की सराहना की। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए ईरान के साथ इस्लामाबाद में सीधी वार्ता में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने रोमांचक मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। असम, केरलम और पुदुचेरी में एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। असम में विधानसभा की 126 सीटों के लिए 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। और अब हमारे साथ गुवाहाटी से संवाददाता राकेश डोले जुड़ गए हैं। राकेश, असम में मतदान को लेकर हमारे श्रोताओं के लिए क्या ताजा अपडेट है?
जी फरहत जी, असम में मतदान के पहले घंटे से ही अच्छी भागीदारी देखने को मिल रही है और मतदाता भीड़ से बचने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षित और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं भी किए गए हैं। भीड़ को कम करने और सुव्यवस्थित मतदान के लिए प्रत्येक मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1200 मतदाताओं को निर्धारित किया गया है। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की व्यवस्थाएं भी की गई है, जबकि उम्मीदवारों के सहायता केंद्र 100 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित किए गए हैं। फरहान जी, आपको बताना चाहता हूं कि मतदाता अनुभव और सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्य भर में स्थानीय संस्कृति को दर्शाते हुए मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और अगर हम 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो असम में 80% से भी अधिक मतदान दर्ज किया गया था। इस बार 126 सदस्य विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। फरहत जी।
जी धन्यवाद राकेश, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। केरलम में कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के मद्देनजर आज राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। पुदुचेरी में 294 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु में एक चरण में होने वाले मतदान और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का भी आज अंतिम दिन है। सभी 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वोटों की मतगणना 4 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, केरलम और पुदुचेरी के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि युवा और महिला मतदाता उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लेंगे और इस चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव बनाएंगे। सरकार ने घरेलू विमानन कंपनियों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया है कि इसके तहत लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 25% की कटौती की गई है। ये कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और 3 महीने तक प्रभावी रहेगी। एक रिपोर्ट।
इस कदम का उद्देश्य भारतीय विमानन कंपनियों पर परिचालन लागत के दबाव को कम करना और वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के बावजूद यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाए रखना है। वैश्विक कच्चे तेल की अस्थिरता के कारण विमानन टरबाइन ईंधन ATF की कीमतों में भारी वृद्धि से विमानन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। भारतीय विमानन प्राधिकरण को देश भर के अन्य हवाई अड्डों पर भी यही कमी लागू करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का अनुमान है कि इस कदम से 3 महीने की अवधि में ही हवाई यात्रा की लागत कम हो जाएगी। शुल्क में कमी के कारण हवाई अड्डों को होने वाली किसी भी राजस्व कमी को भविष्य में निशुल्क निर्धारण के दौरान समायोजित किया जाएगा। ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया क्षेत्र में कई सप्ताह के संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से ईरान के साथ प्रत्यक्ष वार्ता करने के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल और अन्य शीर्ष अधिकारियों को इस्लामाबाद भेज रहे हैं। पहले दौर की वार्ता शनिवार की सुबह होगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिशियन ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद तेहरान इस्लामाबाद वार्ता में शामिल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबफ के करने की उम्मीद है। वे ईरान के युद्धकालीन नेतृत्व के मुख्य व्यक्ति हैं। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कल दो सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा किए जाने के बाद ये वार्ता होने जा रही है। इस बीच इस क्षेत्र में विशेषकर लेबनान में छिटपुट संघर्ष जारी है, जहां इसराइल हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रहा है। ईरान ने इन हमलों को संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया है। विश्व बैंक ने मजबूत घरेलू मांग और मुक्त व्यापार समझौते के कारण मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत में विकास दर का पूर्वानुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। विश्व बैंक ने आशा व्यक्त की है कि दक्षिण एशिया में भारत विकास का प्रमुख इंजन बनेगा। एक रिपोर्ट।
मजबूत घरेलू मांग और निर्यात लचीलेपन के कारण भारत में विकास दर वित्त वर्ष 2025 के 7.1% से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 7.6% हो जाने का अनुमान है। कम मुद्रास्फीति और वस्तु तथा सेवा कर के युक्तिकरण के कारण निजी उपभोग वृद्धि विशेष रूप से सुदृढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में उपभोक्ता मामलों को समर्थन देने के लिए GST दरें जारी रहनी चाहिए। वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि से कीमतों पर दबाव बढ़ने और परिवारों की व्यय योग्य आय सीमित होने की आशंका है। विश्व बैंक समूह ने अपनी त्रैमासिक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य रिपोर्ट में कहा है कि विकास की संभावनाएं मुख्य रूप से भारत के प्रदर्शन से प्रेरित हैं। इसे मजबूत घरेलू मांग, शुल्क कटौती और ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते वाले हालिया व्यापार समझौतों का समर्थन प्राप्त है। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया उपाध्यक्ष जोहान्स जुट ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण के बावजूद दक्षिण एशिया की विकास संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के क्रिटिकल अवस्था हासिल करने की उपलब्धि पर भारत की सराहना की है। ये ऐतिहासिक कदम देश के स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम और लंबे समय तक ऊर्जा की स्थिरता हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ग्रोसी ने इस उपलब्धि को भारत की प्रभावशाली प्रगति बताया। ये ईंधन की स्थिरता और परमाणु ऊर्जा के भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि IAEA भारत के परमाणु कार्यक्रम के सुरक्षित और संरक्षित विकास में सहयोग जारी रखेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। गुजरात के कच्छ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित सरदार पोस्ट पर आज शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
कच्छ में सीमावर्ती सरदार पोस्ट पर आयोजित होने वाले इस शौर्य दिवस कार्यक्रम में CRPF के वरिष्ठ अधिकारी और जवान शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे और बैंड प्रदर्शन के माध्यम से वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 9 अप्रैल की सुबह लगभग 3500 पाकिस्तानी सैनिकों की इन्फेंट्री ब्रिगेड ने इन पोस्टों पर अचानक हमला किया। इस संघर्ष में 34 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस बहादुरीपूर्ण मुकाबले में CRPF के 7 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। छोटी टुकड़ी होने के बावजूद जवानों ने लगभग 15 घंटे तक दुश्मन की ब्रिगेड का सामना किया, जो सैन्य इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। अशरफ नथवाणी, आकाशवाणी समाचार, भूज।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CRPF शौर्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल फॉन वॉन जियांग को वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। वियतनाम की नई सरकार के लिए ये नियुक्ति कल आधिकारिक रूप से घोषित की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत वियतनाम साझेदारी आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत होगी तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। IPL क्रिकेट में रोमांचक मैच में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 1 रन से हरा दिया। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बनाए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स 8 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए KL राहुल ने सर्वाधिक 92 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के राशिद खान ने 3 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय ग्रीको रोमन पहलवानों ने कल किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीते। नितेश सिवाच ने रजत जबकि प्रिंस और सचिन सहरावत ने कांस्य पदक जीते। कल संपन्न इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 5 पदक जीते। इससे पहले मंगलवार को ललित सहरावत ने 55 किलोग्राम वर्ग में रजत और सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धाएं भी कल से शुरू हो गयी। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम और मेघालय में दिन भर गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। विभाग ने ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका जताई है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद फरहत। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच जंग थमने का समाचार आज सभी अखबारों की पहली सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, संघर्ष थमा पर संशय कायम। ईरान अमेरिका में 2 सप्ताह के युद्ध विराम का ऐलान, मगर हमले नहीं थमे। दैनिक जागरण लिखता है, पश्चिम एशिया में 2 सप्ताह का युद्ध विराम। अमेरिका ईरान ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। पाकिस्तान में होगी वार्ता। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से नीचे आया। फिलहाल जंग थमने से बाजार में 5 साल की सबसे तूफानी तेजी, सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। पत्र लिखते हैं, निवेशकों ने बुधवार को कमाए 17 लाख करोड़ रुपए। जनसत्ता ने केरलम, असम और पुदुचेरी में आज विधानसभा चुनाव होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, केरलम असम में सत्तारूढ़ दल फिर सत्ता पाने की कोशिश में। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, मैदानों में आज बारिश। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से राजमार्ग बाधित, वैष्णो देवी यात्रा पर भी असर। अमर उजाला की सुर्खी है, देशबंधु ने राजधानी दिल्ली में हवा साफ होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, दिल्ली एनसीआर में बहुत वर्षों बाद ग्रीन जोन में एक्यूआई। देशबंधु ने अपने संपादकीय पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आइए मिलकर भारत की नारी शक्ति को सशक्त करें। पत्र लिखता है, पिछले कई दशकों से लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास हुए हैं और हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तब तक प्रगति करता है जब माताओं और बहनों को आगे बढ़ने के अधिक से अधिक मौके मिलते हैं। राजस्थान पत्रिका ने हवा में बढ़ा मुसाफिर शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। बीच उड़ान गूंजी किलकारी, नागरिकता पर असमंजस। कैरेबियन एयरलाइंस की जमैका से न्यूयॉर्क की उड़ान में जन्मा बच्चा। दैनिक ट्रिब्यून ने हरियाणा सरकार के 2 बड़े फैसले प्रकाशित किए हैं। हरियाणा मजदूरी में 35% वृद्धि, अग्निवीरों का आरक्षण डबल।
धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। सरकार ने घरेलू विमान कंपनियों के लिए राहत उपाय की घोषणा की। हवाई अड्डों पर शुल्क में 25% तक कटौती। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.6% किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में भारत की परमाणु उपलब्धि की सराहना की। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए ईरान के साथ इस्लामाबाद में सीधी वार्ता में उपराष्ट्रपति जेरी वेंस अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने रोमांचक मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हराया। समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।